शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिछड़े हमारे। समय सार परमागम की 116 से 120 गाथा तक जो 5 गाथाओं का ग्रुप है उसकी चर्चा चल रही है, जिसमें सांख्य मतानुयायी शिष्य को ध्यान में रखकर यह बात कही जा रही है कि यदि आत्मा स्वयं अकर्ता है और ऐसा कोई माने सर्व था तो वो बात सही नहीं है। उसकी चर्चा अभी अपन कर रहे हैं। गाथाओं का अर्थ अपन ने कल किया था, इसलिए अब टीका आरंभ करते हैं। टीका भी बहुत सरल है, फिर ज्यादा समय अपन इसमें नहीं लगाएंगे और पढ़कर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 186 अपना समय सार अनुशीलन किताब में भी हो, उसमें भी होगा। यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं परिणमित नहीं हुआ। यदि ऐसा माना जाए तो वह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा और कारमान बगड़ाएं कर्म भाव से परिणमित नहीं होने से संसार का अभाव सिद्ध होगा। देखो ये 5 गाथाएं हैं ना, इसमें पुद्गल द्रव्य में यदि परिणमन शक्ति नहीं हो और वो स्वयं परिणमित नहीं हो, जीव उसे परिणमाए, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अगली जो 5 गाथाएं आएंगी ना, उसमें ये आया कि यह जीव यदि स्वयं अपने कर्मों से नहीं बनता हो, बंध दशा रूप स्वयं परिणमित नहीं होता हो, पुद्गल उसे बांधता हो, तो ये फिर जीव अपरिणामी सिद्ध होगा। यानी ये 5 गाथाएं पुद्गल की तरफ से हैं और 5 गाथाएं जीव की तरफ से होंगी और बिल्कुल एक सी हूबहू। अकेले पुद्गल की जगह जीव शब्द बदल जाना और जीव की जगह पुद्गल शब्द कर देना तो अगली 5 गाथाएं बन जाएंगी। इसलिए जितनी मेहनत अपन इन गाथाओं में कर लेंगे वो अगली गाथाओं में करने की जरूरत नहीं होगी। और अमृतचंद्राचार्य ने इसलिए जो है ना पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति, ये बात जो ली ना, ये कलश इन 5 गाथाओं के बाद लिया और वो कलश उन 5 गाथाओं के बाद में लिया। यदि ये कलश इसके बाद में नहीं लिया हो गया होता, है ना, तो अपने 10 गाथाओं का ही ग्रुप बनाते। हो सकता है कि अमृतचंद्राचार्य भी बनाते, लेकिन एक कलश बीच में आ गया तो फिर उन्हें अलग अलग करना जरूरी था। ये अलग जानते हैं, अलग 31 गाथाओं किस आधार पर की जाती है, ये शायद आप लोग नहीं समझते होंगे। कुछ गाथा ऐसे होते हैं कि जिनका एक गाथा में अर्थ ही नहीं निकलता है। जब तक 5 गाथाएं एक साथ नहीं पढ़ोगे तब तक बात पूरी नहीं होती है, उनमें कंटिन्यूशन में बात चलती है, तो उन गाथाओं को अलग नहीं किया जा सकता है। देखो भक्तांबर महाकाव्य है ना, तो उसमें आपने देखा होगा शुरू के 2 छंद हैं, उनमें युग्मम लिखा रहता है, युग्मम अंत में ऐसा लिखा रहता है युग्मम। कभी ध्यान दिया, कभी सोचा कि युग्मम का क्या मतलब है? वो ये कहना चाहते हैं कि इन 2 गाथा छंदों को एक साथ पढ़ो और एक साथ इनका अर्थ करो, क्यों अकेले एक छंद में अर्थ होगा नहीं, आप पढ़ो तो नहीं होगा। भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणम मुद्योतकम चलित पाप तमोभितानम सम्यक प्रणम्य पाद युगम यगादा। अब सम्यक प्रणम्य अच्छी तरह नमस्कार करके यहां खत्म हो रहा है वाक्य, बोलो हो जाए, कोई क्रिया नहीं है ना, करना क्रिया तो है करोति, लेकिन उसमें एक तो प्रत्यय लगाकर लप लप प्रत्यय लगाकर करके ऐसा बना दिया गया है भाववाची, है ना। तो बात पूरी हुई नहीं कि करके तुम क्या कर रहे हो, कि मैं आज नाद भगवान की स्तुति करता हूं तो प्रथमम जिनेन्द्रम स्तोष्ये, मैं पहले जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करता हूं तो बाक वहां जाके खत्म होता है। ऐसे इन पांच गाथाओं में देखेंगे आप, जो छोड़ नहीं सकते हैं। अब एक नियम और समझ लो कि दो गाथाएं का अर्थ एक साथ होता है तो उन्हें बोलते हैं युग्मम, तीन का अर्थ एक साथ होता है तो उसे बोलते हैं विशेषकम, विशेषकम लिखा होगा, और चार या चार से अधिक गाथाओं का अर्थ एक साथ हो तो उसे में लिखा रहता है कुलकम, वो कुल है। ये नियम है, साहित्य सब जानते होंगे विद्वान लोग तो मेरे ख्याल से, अभी विद्यार्थी जानते कि नहीं जानते पता नहीं है। मैंने कुलकम लिखा हो, विशेषकम लिखा हो, युग्मम लिखा हो तो उसका क्या अर्थ है। अभी हमने जो समय साथ टीका में कुछ ऐसा किया है कि पहले नहीं थी दो गाथाएं इकट्ठी और अपन ने की हैं, तो उसमें और तो कोई तकलीफ नहीं आती है। तकलीफ ये आती है कि दोनों के हेडिंग अलग अलग होते हैं ना, तो उन हेडिंग को फिर एक जगह समाहित करना पड़ता है और टीका भी एक साथ लेनी पड़ती है। लेकिन ये जहां देखा कि इन दोनों दो गाथाएं या तीन गाथाएं या चार गाथाओं को साथ में रखने से काम चल जाता है, अच्छा अर्थ करने में सुविधा रहती है। आपको सुविधा माने क्या, क्योंकि उन गाथाओं का अर्थ बिल्कुल एक सही होता है, सिर्फ एक शब्द बदल दिया बस। अब बार 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 उसके उत्थान क्या करें और बार बार उसका समापन करें, समापन लिखना पड़ता है ना, तो वो अटपटा लगता है। और उन्हें चार या पांच गाथाओं का समापन एक साथ किया जा सकता है, माने जो कुछ किया गया है वो बहुत सोच समझ के किया गया है, आंख नीच के नहीं किया गया है। क्या उसके पीछे कोई थिंकिंग है, वो उन्हीं गाथा में होगा कि जिनके बीच में कलश नहीं आए होंगे। अभी नियम सार का हम अनुशीलन लिख रहे हैं और उसमें कई गाथाएं ऐसी हैं कि जिनकी दूसरी पंक्ति बिल्कुल एक सी ही है, उन सबको एक साथ रखा जा सकता है और एक साथ फ्लो में बहुत अच्छा अर्थ उसमें किया जा सकता है। जब आप ये पढ़ते हैं, ये छंद जो आपको छंद पढ़वाते हैं ना, देखो मेरी इच्छा ये है कि जब ये छंद पढ़े जाएं तब ये विद्यार्थी रहे, मेरे प्रवचन से भी ज्यादा उपयोगी हैं, उसमें एक व्यवस्थित क्रम आपके ख्याल में आता है, ऐसा पता लगता है कि हम गाड़ी कहां चल रही है, कौन से स्टेशन पर रुक रही है, एक क्रमबद्धता तो कंटिन्यूटी आपके ख्याल में आती है। लेकिन मैं तो जब आता हूं तब तक भी आप लोग नहीं आते हैं, अभी भी पूरे तो नहीं दिखते हैं मुझे, हम तो इतना जल्दी, हमें को तो जल्दी आने में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन इसलिए रखते हैं कि तुम्हें कॉलेज में जाना है, तो मतलब ये नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए हम प्रयत्न करते हैं, तुम ऐसी उपेक्षा करोगे तो हम उसे बंद कर देंगे, बहुत तकलीफ उठा करके हम करते हैं, इसमें गंभीरता से सोचना। हाँ इतना हो गया बीमार, हाँ तभी बातें चल रही थी, ये तो नीतिगत बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हैं। उनने हरेक के बीच में कलश डाल दिए, क्या और अमृत चंद्राचार्य जैसी प्रतिभा अपेक्षाकृत इसमें समझ उनमें नहीं थी, चिंता मत कर नाराज मत होना। अब वो जो कलश है बस भगवान की भक्ति का डाल दिए, कुछ भी उससे कोई विषय वस्तु से संबंधित नहीं है क्या? और उससे वो फिलो भंग हो जाता है, उसका फिलो भंग हो जाता है। लेकिन आत्मख्याति में वो सब है, बहुत मार्मिक बात है। तो बाकी के जो मोक्षु भाई हैं वो तो इसका अर्थ भी समझेंगे तो उनका काम हो जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों को तो इसकी नस नस समझनी चाहिए कि यहाँ ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सर्वासिद्धि जो लोग पढ़ते हैं उसमें आता होगा ना, ये सूत्र में ऐसा क्यों लिखा, ये शब्द क्यों नहीं लिखा, अच्छा शब्द क्यों लिख दिया, इसको पहले क्यों लिख दिया, इसको बाद में क्यों लिखा, वो सारी बहस होती है ना राजवार्तिक में, मतलब सर्वासिद्धि में। तो बाद के आचार्यों ने उन सब बातों पर बहुत समीक्षा की है और उनने अपने विचार रखे हैं, उससे आपके ज्ञान में बहुत पुष्टि होती है। तो वो बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं कि कोई मेरे प्रवचन में भीड़ ज्यादा हो जाए इसके लिए मैं नहीं कहता हूं, आप सुन रहे ना। हाँ, तो अब ये पांच गाथाएं पुद्गल की तरफ से हैं। ये कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य में स्वयं प्रणमन करने की शक्ति है और उसे अपने प्रणमन करने में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, और यदि तुम ऐसा मानो कि उसे किसी के सहयोग की जरूरी है, उसके बिना वो चलेगा नहीं, निमित्त के बिना काम होगा नहीं, तो उसकी इस प्रणमन शक्ति का, प्रणाम शक्ति का आपने अपमान किया क्या? तो यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं प्रणमित नहीं हुआ। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा, जिसमें स्वयं प्रणमन करने की शक्ति नहीं है उसे तो अपरिणामी कहते हैं। जिस आदमी में बिना किसी दूसरे के सहयोग के, बिना लाठी के, बिना वो बैसाखी के, बिना खड़े होकर वो चलने की शक्ति नहीं है, उसे तो लंगड़ा कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? ये माना जाता है तो पुद्गल द्रव्य का लंगड़ा है, तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। और कारमान वैगुणाए कर्म भाव से प्रणमित नहीं होने से संसार का अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि उसी वजह से सारा संसार खड़ा है, अथवा सांख्य मत का प्रसंग आएगा। लोक में ये नियम है के सारे पुद्गल द्रव्य का प्रणमन कौन करेगा? ईश्वर को मानना पड़ेगा फिर हमें करता, क्यों कि हम तो जिनका हमारा प्रयोजन है हम उसको ही प्रणमाएंगे ना। हमने इस टेबल का रूप दिया, ये दिया, एक ब्रिंच बनाई, ये सब किया, लेकिन एक हम कितने का करेंगे, कितने जंगल पड़े हैं क्या पड़े ना प्रथम, तो उनको कौन करेगा? सुने ना, पुद्गल द्रव्य तो तीन लोक में ठसाठस भरे हुए हैं ना, जिसके प्रणमन में किसी आदमी ने कोई योगदान नहीं दिया, ऐसे पुद्गल हैं वे कैसे बढ़ेंगे? आप ये भ्रम पैदा कर लेते हैं कि ये जो हमने पेड़ पौधे लगाए हैं साथ थोड़े बहुत, इसे हमने सींचा है, पाला है, पोसा है, ध्यान रखा है, तब ये है ऐसा हरियाली और हम एकदम उसके हम में बहुत मस्त हो जाते हैं। लेकिन इतने इतने बड़े बड़े जंगलों में उन पेड़ों को कौन पानी देता है क्यों? उनको कौन बोता है, कौन बीज डालता है, कौन खाद पानी देता है? लेकिन वो उग रहे ना, प्रकृति में बहुत बड़ी व्यवस्था है। एक वृक्ष के पैदा होने के लिए एक बीज चाहिए, है ना, उससे काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन प्रकृति ने उसको इतने बीज दिए हैं एक एक वृक्ष को कि उसमें से एक करोड़ में एक भी पेड़ बने तो पेड़ों की कमी नहीं आएगी। बट वृक्ष है, हजार वर्ष से ज्यादा की उम्र होती है, और कितने कितने छोटे छोटे बीज होते हैं, क्यों, और कितने बीज होते हैं, कितनी जबरदस्त व्यवस्था की प्रकृति में है क्या नहीं है। तो तुम्हारे ऊपर नहीं है वो निर्भर, यदि ऐसा माना जाए कि जीव पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से प्रणमाता है, माने कारण वर्णों को जीव ने प्रणमाया, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं प्रणमती हुई उन कारमान वगणाओं को चेतन आत्मा कैसे प्रणमन करा सकता है, यदि वे प्रणमन नहीं होए तो उन्हें कैसे करा सकता है। जब देखो ये हाथ अपन मोड़ते हैं ना, बराबर देखो आपको ऐसे मोड़ने, तो ये हाथ इधर को मुड़ता है कि नहीं मुड़ता, तो मुड़ता है तो यही मोड़ सकते हैं ना, और पीछे को कि नहीं मुड़ता है तो आप भी नहीं मोड़ सकते, समझ रहे हैं ना। ये हाथ ऐसा मुड़ता है और पीछे को नहीं मुड़ता है, तो जहां को मुड़ता है हम अभिमान करते मैंने मोड़ा, यदि तूने मोड़ा तो चाहे जहां को मोड़ देना, यदि ये पुद्गल द्रव्य स्वयं प्रणमनशील नहीं है, ये तर्क कितना है, इसको बोलते हैं उभय तो पास, वेस्टर्न फिलोसफी में, वेस्टर्न तर्क शास्त्र में, लॉजिक में एक उभय तो पास नाम का दोष आता है। उभय तो पास से बोलते हैं कि दोनों तरफ से फंसे, उभय माने दोनों तरफ, उभय तो पास, और उसमें ये उदाहरण दिया जाता है, किताबों में लिखा है कि किसी व्यक्ति ने ये कहा कि जो तुम बोल रहे हो किसी मुसलमान मौलवी से, ये बात कुरान में लिखी है कि नहीं, तो उसने कहा कि नहीं कुरान में नहीं है, तो हट जाओ गद्दी से, क्यों कि जो बात कुरान में नहीं है वो सत्य हो ही नहीं सकती है, तुम्हारी बातें सुनने के लिए हम यहां नहीं बैठे हैं क्या, तुम्हारा बोलना फिर वो असत्य है, अनुपयोगी है। तो उसने कहा हाँ कुरान में लिखी है, कुरान में लिखी ही है तो फिर तुम्हारे क्या क्या किया तुमने, तुमने क्या किया, मैं दो ही तरफ से उत्तर दे रहे तो उसको फंसाना, और उसके बचने की भी विधि लिखी है, उसके दो विधियां हैं, एक सिंह निग्रह विधि और एक मध्य निर्गमन विधि, मैंने कभी चर्चा की है पहले इनकी। यदि आप ताकतवर हो और आप समझते हो कि हमें इसको सिद्ध पार पार सकते हैं तो सिंह निग्रह विधि का प्रयोग करो, यदि आप अपने को कमजोर महसूस करते हो तो मध्य निर्गमन विधि का प्रयोग करो। ये कौन सी विधियां हैं कि एक सांड, शक्तिशाली सांड आपके सामने आपको मारने के लिए आ जाए, अब आपके पास बचने का क्या उपाय है, कि यदि आपकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि उसे आप निर्मत कर सकते हैं तो आपके दोनों सींग उसके ऐसे पकड़ लो आप और फिर दबा दो नीचे को कि वो हिल भी नहीं पाए, इसको बोलते सिंह निग्रह विधि। सिंह माने शेर नहीं, सिंह माने सींग, सींग पकड़ के दबा देना, और आप समझते हो कि भैया ये दो आगे फेंक देगा और बुरी हालत हो जाएगी, तो उन दोनों सींग के बीच में हो जाओ और वहां डटे रहो पकड़ के अच्छी तरह से, फिर वो कितना ही कहीं मारेगा उन सींगों को, दीवार में मारेगा, पेड़ से मारेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए तो सींग ही टकराएंगे, उसे ही चोट लगेगी, तुम बच जाओगे। क्या क्या नाम? मध्य निर्गमन विधि के बीच से निकल जाओ, क्योंकि उसके सींगों में मुड़ने की ताकत नहीं है। तो ऐसे कहे तो ऐसे ही रहेंगे, समझ रहे ना? तो ये ऐसा है, देखो यदि वो पुद्गल द्रव्य में प्राणमन की शक्ति है कि नहीं है। यदि है तो फिर जीव के ने उसे प्रणमाया, स्वयं प्रणमते हुए पुद्गल को जीव ने प्रणमाया, इसकी क्या जरूरत थी, है ना? और नहीं है तो जिसमें शक्ति स्वयं नहीं है उसे कोई दुनिया में प्रणमा सकता है? देखो पढ़ो, यदि ऐसा माना जाए कि जीव पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से प्रणमाता है, तो ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं प्रणमती हुई उन कामना वर्णाओं को चेतन आत्मा कैसे प्रणमा सकता है? यदि ऐसा माना जाए कि पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव से प्रणमन करता है, तो जीव कर्म को कर्म रूप प्रणमन करता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होगा। वैसा ही है ना? अतः ऐसा जानो कि जिस प्रकार नियम से कर्म रूप कर्ता के कार्य रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि रूप परिणत पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि ही हैं। माने वो पुद्गल ही ज्ञानावरणादि रूप कर्म में बदला है, उसमें जीव की कोई जरूरत नहीं है। उक्त गाथाओं की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद लिखते हैं कि अब सांख्य मतानुयायी शिष्य के प्रति पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत तो सिद्ध करते हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि आचार्य कुंद का शिष्य होकर, ये तो अपन चर्चा कर चुके हैं, है ना, पढ़ भी चुके हैं ना, उसे सांख्य मतानुयायी हम कैसे कह सकते हैं, है ना? सबसे नीचे की दो पंक्तियां पढ़ो। इन गाथाओं में संयुक्ति यह सिद्ध किया गया है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं प्रणमनशील है, उसे अपने प्रणमन में परकीलंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। तो कहते निमित्त तो होता है ना, होने ना निमित्त को, वो कम इंकार करता है, फिर तो निमित्त तो रहेगा ही नहीं, क्यों नहीं रहेगा? निमित्त तो अपने कारण निमित्त होता है। पुद्गल द्रव्य को ये अपेक्षा नहीं है कि निमित्त आवे तो मैं परिणमित हूं। सवाल है पुद्गल द्रव्य पूर्णता स्वतंत्र। देखो कर्ता किसे कहते हैं, तो तुमने व्याकरण में लिखा है स्वतंत्र कर्ता, ये सूत्र है ना, तो स्वतंत्र रूप से परिणमित हो से कर्ता कहते हैं। अपने समय सार में लिखा है या परिणमति से कर्ता, जो परिणमित होता है स्वयं उसको कर्ता कहते हैं। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अब आत्मख्याति पढ़ते हैं अपन। यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं अबद्ध रहे, बंधे नहीं, और स्वयं एव कर्म भाव से परिणमित न हो, तो वह अपरिणामी सिद्ध होगा। ऐसा होने पर संसार का अभाव सिद्ध होगा। कारण यह है कि कारमान वर्णा के कर्म रूप हुए बिना जीव कर्म रहित सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में संसार कैसा, क्योंकि जीव और की कर्मबद्ध अवस्था का नाम ही तो संसार है। देखो आप कह दो ना, मैंने आम पकाए, क्यों जी? आप उन्हें आमों को नहीं पकाते तो वे आम तो पकते ही नहीं ना, फिर कच्चे ही रह जाते। तो फिर वो ये कहता है कि भाई साहब पकते तो, लेकिन थोड़ी देर हो जाती है, अच्छे नहीं पकते, तो मैंने उसे अच्छे पकाए और जल्दी पकाए, ये कहते हैं क्या? नहीं, अच्छा तो तूने ऐसा किया है, लेकिन तुझे ऐसे कैसे पता कि ये आम अच्छा नहीं पकेगा और जल्दी, इसके पकने का काल तेरे को पता है? अरे उस आम को पेड़ पे नहीं पकना था, ऐसे ही पाल में पकना था और इसी समय में पकना था, ये अनंत काल पहले से नक्की था कि मैं नहीं पकाता तो, मैं उसको उस पाल में नहीं डालता तो। बोलो, सबके हृदय में एक उत्तर आया होगा, और कोई डालता? वो आम को पकना उस काल में की था, पर निमित्तों की तो कमी थोड़ी है, पकाने वाले तो लाखों लोग हैं, वस्तु तो एक है, उपादान तो एक ही है, निमित्त तो बहुत हैं। हम आपको नहीं पढ़ाते तो और कोई पढ़ाता? यदि हमारे भाग में पढ़ना लिखा था तो हम बिना पढ़े नहीं रहते, लेकिन ये उत्तर सही नहीं, क्योंकि हमने फिर उस वस्तु की अव्यवस्था को स्वीकार कर लिया, कोई ना कोई, इसमें क्या तकलीफ होगी कि फिर हम निमित्त को खोजें, फिर अच्छे निमित्त को खोजें, फिर निमित्तों की खोज का काम शुरू हो जाएगा। क्या महावीर जी ख्याल में आई बात? तो क्या है सही उत्तर फिर इसका, क्या जवाब देना चाहिए? क्या तुम नहीं पकाते तो, ये तो आया कहां से? तुम्हारा भी अनंत काल पहले ये विकल्प था कि तुम्हें ऐसा विकल्प आने ही वाला है, ऐसी क्रिया तत्समय में होने ही वाली है। जो वस्तु व्यवस्था सही है, हम उसके अनुरूप ही जवाब दो कि तुम नहीं तो तुम जैसे सैकड़ों मिल जाएंगे, ऐसा जवाब क्यों दो? समझदारी किसमें है बोलो? हमारे पिताजी एक किस्सा सुनाते थे, बहुत मार्मिक है, आप भी सुनना। एक कोई लड़की वाला किसी लड़के को देखने गया, कोई बात चलती थी, तो क्या हुआ क्या हुआ, फिर लड़के वाले ने मना कर दिया होगा, जो कुछ भी हुआ होगा, तो उसने कहा हमें ऐसे सैकड़ों लड़के मिल जाएंगे हमारी लड़की। क्या बोला? ऐसे तो हमारी लड़की को सैकड़ों लड़के मिल जाएंगे, तुम समझते क्या हो अपने को, कोई कमी है लड़कों की? तो उसने जवाब दिया बहुत धैर्य और शांति से कि भाई साहब क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिल जाएंगे, ढूंढ लेना, हमारे लड़के को तो अदर एक लड़की चाहिए, सैकड़ों नहीं चाहिए। यदि तुम्हारी लड़की को सैकड़ों की जरूरत हो तो सिर्फ सैकड़ों खोज लेना। क्या 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 जवाब दिया? कि तुम्हें सैकड़ों चाहिए ना, मतलब किसी लड़की को सैकड़ों पति थोड़ी चाहिए पड़ते हैं, एक ही पर्याप्त होता है ना, और ऐसे सैकड़ों निमित्त मिल जाएंगे क्यों? भैया निमित्त सैकड़ों नहीं होते हैं, हर कार्य का निमित्त एक ही होता है और वो अनादिकाल से सुनिश्चित होता है, समझे ना? ये सैकड़ों वाला तर्क तुम कहां से लाया? ये तेरे दिमाग को खराब करता है। अपनी भारतीय संस्कृति में तो वर को वधु को खोजने की बात लिखी है, चुनने की बात नहीं है। चुनने का अधिकार तेरे को कहां है? जो नक्की है और तेरे को पता नहीं है तो पता करना है। जैसे अपना बच्चा खो जाए तो है तो कहीं ना कहीं, उसके अस्तित्व में थोड़ी बात है, सिर्फ हमें पता नहीं है कहां है, इसलिए हम खोजने की बात करते हैं। और पता हो जाए तो उसके होने और नहीं होने की, मुझे लड़का चुनना है, कोई गोद थोड़ी लेना है, सिलेक्शन करना है। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि आपको किसी बच्चे को गोद लेना है, और जिस बच्चे को आपने खूब खोज खोज कर हजारों में से चुनकर एक को खोजा और गोद लिया, यदि भगवान महावीर से पूछा जाता कि ये बच्चे को गोद लेगा कि नहीं, और लेगा तो किस बच्चे को लेगा तो बता सकते थे कि नहीं? अरे वो तो पहले से नक्की था, गरीब घर में पैदा हुआ है और उसे करोड़पति बनना है, ख्याल में आई ना? तो एक फला करोड़पति आकर के इस उम्र में, उसकी इस उम्र तक कैसे पाप का उदय था कि दो रोटी की व्यवस्था नहीं थी, और इस उम्र के बाद वो करोड़पति हो गए। हो जाता कि नहीं हो जाता, बोलिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि निमित्त को खोजने के लिए तुम व्यग्र क्यों होता है, ये पर्यटन सार की पंक्ति है। कौन सी गाथा में है? ये जीवा जीवाधिकार की। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जीव निमित्त को खोजने के लिए इतने व्याकुल क्यों होते हैं, ऐसी पंक्ति है संस्कृत में, है ना? मैंने कर्मद पर्याय में शायद कोट की है। और आज का जो सुबह टीवी का प्रवचन था वो बहुत मार्मिक था, खासकर सुपर प्रकाशक के संदर्भ में। अश्विनी गाथा का प्रकरण चल रहा है क्या? तो वो कहते हैं कि उन्होंने तो पहले पर को जानने की शर्त रखी, तुझे मुह का नाश करना है तो पहले आत्मा को जान नहीं लिखा, जो अरहंत भगवान को दिव्य गुण से पर्याय से जाने, जो जान दी अरहंतम दिव्य गुण ते ही, तो वो स्वयं है के पर, बोलो अरहंत भगवान कैसा उपयोग ही नहीं है पर को जानना, बोलो अजित भाई। उनने तो कहा उपयोग ही नहीं, बेटा अनिवार्य है कि जो पहले अरहंत भगवान को द्विगुण पर्याय से जानेगा वो अपने आत्मा को जानेगा, और जो अपने आत्मा को जानेगा उसके दर्शन मुहे का नाश होगा। कितना क्लियर लिखा। अब ऑप्शनल रह गया क्या? और वैसे भी उपादान माने कर्ण लब्धि में आत्मा को उपादान से सम्मर्दन की प्राप्ति होती है, उसमें निमित्त नहीं होता क्यों? और उसके पहले वेदना लब्धि होती है, तो पहले कौन रहा है? क्यों? और वेदना लब्धि की जरूरत है तो वो देवसास गुरु के बिना नहीं होगी, और देवसास गुरु ये तीनों स्वाह है के पर, बोलो। अब वो कौन है, कैसा होगा, उस झगड़े में मत पड़ो। ज्ञानी होगा, अज्ञानी होगा, चौथे गुणस्थान वाला होगा कि केवली होगा, क्यों? किसी ने चौथे गुणस्थान वाले से तत्व ज्ञान समझ कर और अपने आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्न किया तो उसमें वो असफल हो जाएगा क्या? और कहीं ने केवली से सुना तो क्या फर्क पड़ेगा? पद्म मलधारी देव तो ये कहते हैं क्या केवली केवली लगा रखा है, हम बैठे ना तेरे सामने, हम समझा रहे तो समझता नहीं है, और केवली भगवान, केवली भगवान का विरह है, ऐसा लिखा है तो क्या लिखा? केवली के पास तू जाता तो क्या तुझे वे घोंट के पिला हाथेली पे आत्मा रख के बता देते, ऐसा लिखा? ये केवली भगवान क्या करते? वहां भी तेरे को दिव्य ध्वनि में सुनने को ही मिलता कि भगवान के दर्शन हो जाते, कि दर्शन काहे के होते, भगवान के नहीं होते, वहां भी शरीर के ही होते, उद्गल के ही, और यहां भी मूर्तियां विराजमान है ना, और वाणी हमारे पास है और शास्त्रों में लिखी, रोता काहे को है, काम तो करता नहीं है अपना, कि हमारे भाग में तुम्हें जैसे पंडित बदे थे कोई केवली नहीं मिला हमारे लिए, क्यों? क्यों? अरे भाई ये रोना मत रो, तेरे को यदि एक सिगरेट खरीद के पीना है तो जो यहाँ पान वाला है ना उसके यहाँ वही सिगरेट मिल जाएगी, है? वो कंपनी वालों को याद मत करो, अपने घर आए तो नाग ना पूछे और बामी पूजन जाए, कहते अहंत भगवान का अपमान नहीं है। अरे अहंत भगवान का अपमान नहीं है, तेरा जो अहंत भगवान के नाम पर तू वर्तमान में मुक्ति के मार्ग के पुरुषार्थ से विरक्त होना चाहता है तेरी उस विरक्ति का अपमान है। क्या ये तेरी उस विरक्ति के लिए बात कही जा रही है? अनंत भगवान की महिमा को कम करने के लिए ये बात नहीं कही जा रही है। क्यों? एक ज्ञानी धर्मात्मा से वो तत्व तो समझा जा सकता है तो ये कहा कि तुम अनंत भगवान के कुछ श्रोताओं को कम कर रहे हो, ऐसा हुआ है? हम गांव गांव में जाते हैं और लोग बहुत प्रभावित होते हैं, बातें कहते हैं, हम कहते हैं कि देखो भैया तुम्हें समझना है तो गांव में जो स्वास्थ्य सभा चलती है ना, और हमारा विद्यार्थी पढ़ के वहां सुनाता है, रहता है, उसमें डेली जाया करिए। अरे साहब आपकी बात अलग है और उनकी बात अलग है, आप ऐसे समझाते हो कि एकदम गले उतर जाती है। लेकिन क्या करें, गंगा मैया का पानी रोजीना नहीं मिल सकता है, रोजीना तो गांव के कुएं से ही पानी पीना पड़ेगा, इधर प्यासों मर जाओगे। हमारा बहुत अच्छा लगता है ना, तो छोड़ो घर द्वार, चलो हमारे साथ रहना, रोजीना हमारे साथ रहना और तुम्हें प्रयोजन मिलेगा। हैं साहब वो तो फिर क्या करें? तो ये गांव वाले सही सुनो, हम तो ये स्थापित करते हैं, एक के भरोसे नहीं रहो और निमित्त के भरोसे ही क्यों रहते हो? निमित्त तो आकाश से उतर के आता है, क्या मिलेगा? ये नहीं तो वो वाली लेन पे नहीं जाना। कौन सी लेन? बोलो रमेश, कि तुम्हारे को जब तत्व समझ में आएगा उसमें जिसको निमित्त होना होगा अनादिकाल से नक्की है वो ही होगा और होगा ही, उसकी वजह से तेरे को तेरा काम नहीं रुकेगा। मैं इसके लिए वो भी बहुत उदाहरण देता हूं, सर्कस पे जो लड़की झूलती है ना, तो यहां एक एक झूले पे वो खड़ी होती है और दूसरा झूला अपने हाथ में पकड़े रहती है, कभी देखा हुआ ना? फिर वो उस झूले को ऐसा फेंकती है, फिर वो झूला वहां आगे जाता है, उसके बाद में उस दूसरे झूले पे ये जाती है और वो इस झूले को छोड़कर उस झूले को ऐसा पकड़ लेती है, ये झूला वापस चला जाता है और वो झूले पे झूलने लगती है। क्यों जी? वो लड़की ये कहे कि वो झूला नहीं आया तो, और मैंने ये हाथ छोड़ दिए तो, और वो देख के थोड़ी पकड़ती है, वहां देखने की गुंजाइश कहां है? वो समझती है जिस ताकत से मैंने भेजा है वो इतने समय में वहां तक पहुंचेगा, वहीं तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, और वहां से लौट के आएगा उसे इतना समय लगेगा, वो उतने समय बाद यहां से दूसरे झूले पे जाती है। उस वक्त तो कोई उसके मशीन नहीं है, यंत्र नहीं है कि जिससे वो नापे समय को। क्यों? वो कितना एक्यूरेट समय नाप लेती है, उस पर जाती है और आंखें मीच के इसे छोड़ देती है, तो ऐसा हाथ करती है तो वो झोला उसके हाथ में होता है और वह बंद बन। यदि उसे इतना भरोसा नहीं हो तो वो खेल नहीं दिखा सकती। अब तुम्हें निमित्त नहीं आया तो, नहीं आया तो, नहीं आया तो, ये ऐसा कभी होगा ही नहीं, इसलिए उसकी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। इसको यहां क्या कह रहे कि निमित्त होगा फिर भी पुद्गल में स्वयं परिणमित होने की पूरी शक्ति है, उसे किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं है, उसे निमित्त के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों हम देवशास्त्र गुरु के हाथ पैर जोड़ें? इतनी पूजा भक्ति ये सब बेकार है ना? बात तो बिल्कुल सच्ची है, तुम्हारी इससे कुछ होने वाला नहीं है, घबराना नहीं। लेकिन जो चीज तुम्हें प्राप्त करने की लालसा है वो जिनने प्राप्त कर ली है उनकी महिमा हरेक के चित्त में आती ही है, इसमें वो हमारे उपकारी हैं, इसलिए निमित्त हैं, इसलिए नहीं। वो तो उस चौथे पांचवें गुणस्थान की, छठवें गुणस्थान की वृत्ति में ही शामिल है। क्या जिसे विद्वान बनना है उसमें विनय तो आनी ही है, आएगी ही उसके पहले, उसके पहले नहीं आए ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? किसी व्यक्ति की छाती पर बंदूक रखकर उसकी तिजोरी की चाबी ली जा सकती है, उसी से खुलवाई भी जा सकती है और माल निकालकर अपनी झोली में डलवाया भी जा सकता है, लेकिन किसी गुरु की छाती पर बंदूक रखकर कोई विद्या आज तक किसी ने सीख नहीं पाई, सीख नहीं सकता। क्यों? गुरु नहीं पढ़ाएगा। हम तो देखा डाकू लोग डॉक्टर को पकड़ के ले जाते हैं, अपनी अम्मा का ऑपरेशन करा लेते हैं जबरदस्ती फ्री में, फिर उसकी बंदूक छाती पे रखते हैं। क्यों? अब वो कैसा हुआ है ऑपरेशन तुम जानोगे और अम्मा जी को पता लगेगा। क्यों? तो वो तो कांपता रहेगा, उसका दिल तो कांपता ही रहेगा कि न मालूम कब इसने गोली चला दी, तो उसका हाथ कांप गया बेटा तो गई तेरी अम्मा जी। ऐसे ही जब तक गुरु के चित्त में वो उत्साह नहीं आएगा तब तक देशना मिलना बहुत कठिन है, असंभव है। और उसके लिए कोई एक ही तरकीब है, उसका नाम है विनय, कि जिसकी वजह से उनके चित्त में ऐसा उत्साह आता है, ख्याल में आई ना, कि वो अपने सारी बात आपको बता देते हैं, तो वो तो आपके अंदर में सहज आएगा। ये कोई कृपा करने की बात नहीं है, कोई किसी दूसरे पे, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं है। अरे साहब हम आपको क्या बताएं, यदि हम भगवान की पूजा नहीं करें तो भगवान बिना पूजा के बैठे रहें, बिना पूजा के बैठे रहें तो उन्हें मोक्ष में से नीचे उतर के आना पड़ेगा। क्यों? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं उनका इतना पुण्य का उदय है कि तुम जैसे सैकड़ों पूजा करेंगे उसकी। है उनके पुण्य का उदय? क्यों? इतना पुण्य का उदय है ना महावीर के किसी सबके, तो जिन तीर्थंकरों की पूजन करते हो, आज तुमने आदिनाथ की कल पार्श्वनाथ की, तो वहां पार्श्वनाथ का पुण्य काम करता होगा तो वहां आदिनाथ का पुण्य काम करता होगा। क्यों? अरे वे तो मोक्ष में गए तो सारा पुण्य पाप नाश करके ही गए हैं, उनके तो कोई कर्म ही नहीं है, कोई कर्म का उदय कहां से आएगा? तूने ये सिलेक्शन किया है ये अपने विकल्प के कारण किया है, और वो विकल्प ज्ञानमय भी हो सकता है और अज्ञानमय भी हो सकता है। ज्ञानमय कैसे हो सकता है? आज महावीर जयंती की है तो महावीर स्वामी की करना, सामने मूर्ति पार्श्वनाथ की है तो पार्श्वनाथ की करना, समझे ना, पावागिरी में गए हैं तो महावीर की करना और चंपापुरी में गए हैं तो बांझ पूज की करना, ये विकल्प सीधे सच्चे हैं, उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। और फिर ये क्या पार्श्वनाथ बाल वो देते हैं, महावीर बाल बच्चे देते हैं, मेरे तो बच्चे की कमी है, हमें बच्चे तो ढेर सारे होते हैं, फैमिली प्लानिंग करानी पड़ी, मुझे तो पैसा की कमी है, तो पैसा देने वाले कौन से भगवान है भैया? ऐसे चुन चुन करके ये तेरे मित्र अज्ञान की महिमा है। तेरे सिलेक्शन में किस बात का वो किया गया है ये इस पर निर्भर करता है। जरा अपने अंदर में झांक के देखें तो हमारे अज्ञान का पता हमें चल जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कई जगह आपने देखी होंगी, नाराज मत होना, वो मूर्तियां हैं तो वो उसका मैं विरोधी नहीं हूं, बहुत बढ़िया है कि बीच में आदिनाथ है, एक बगल में बाहुबली है और दूसरी बगल में भरत, कितने अच्छे लगते हैं। क्यों? कि भाई अच्छे तो बहुत लगते हैं, क्योंकि तीनों ही मोक्ष गए हैं और तीन मोक्ष जाने वाले लोगों की आपने मूर्तियां विराजमान की हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन आपने ये चुनाव क्यों किया? जरा आपके हृदय की जांच करते हैं, इसका आप जरा एक्सरे लेते हैं। क्या कि देख ये बीच में बाप और दोनों तरफ दोनों बेटे, तो तेरे को अभी भी बाप बेटे के संबंध में जितना रस है उतना तीर्थंकरों में रस नहीं है। यदि बीच में आदिनाथ की और बगल में अजितनाथ की और संभवनाथ की होती तो बुरी लगती, क्यों? तेरा ये परिवार बाद तेरे पे हावी हो रहा, तेरे अंदर की इस विपरीत मान्यता, इस विपरीत विकल्प का हम निषेध करते हैं। वे मूर्तियां तो बहुत अच्छी हैं, क्यों? यदि तेरे विकल्प के हिसाब से लगाएं ताराचंद जी तो और अच्छी होती, कि बीच में खड़े होते ऋषभदेव और एक तरफ नंदा और सुनंदा तो मजा आ जाता। हिंदू मंदिरों में है ना ऐसा, राम के साथ सीता जी खड़ी हैं, हैं? कृष्ण के साथ लक्ष्मी जी बैठी हैं, महादेव के साथ पार्वती जी बैठी हैं जोड़े से, मालूम उनको बोलते भी राम परिवार। मंदिर के गर्भगृह को क्या नाम देते हैं वे, लव कुश हैं, सीता, राम परिवार, ये विष्णु परिवार, ये महादेव परिवार, ऐसे बोलते हैं, शंकर परिवार, ऐसे नाम से बनाते हैं। तो ऐसा बनाते तो अच्छा रहता ना, इस नंदा इस नंदा, थोड़े थोड़े बगल में बाहुबली और भरत भी खड़े कर देते, पूरा परिवार अच्छा लगता कि नहीं लगता? लेकिन परिवार को छोड़ के तो वे साधु बने थे भाई साहब। तो दूसरे भाई बोले कि पंडित जी आप सही बात करते हैं, ऐसा कहना आपने बोला ना ऋषभदेव अजितनाथ और संभवनाथ, ये बोले ना हमने ऐसा ही किया है। अच्छा अच्छा, है कहीं ऐसी मूर्ति सारे हिंदुस्तान में? खोज के हो तो बताना कौन, ऋषभ अजित और संभव तीन की खड़ी हो एक साथ नहीं मिलेगी। तो तुम हमने की है, तो हम गए देखने तो शांतिनाथ कुंतनाथ और अरेनाथ खड़े थे कृम से। हमने देखो भाई तीनों कृम से ही लिया, शांतिनाथ कुंतनाथ और अरेनाथ, क्यों लिया भैया? 24 में से तुमने ऋषभ अजित संभव क्यों नहीं चुने? कि तीनों चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे और कामदेव भी थे, इसलिए तो तेरे को अभी चक्रवर्तित्व और कामदेवत्व में रस है, क्योंकि तीर्थंकर तो बेबी थे ऋषभदेव संभव, उससे ज्यादा रस तेरे को सुंदरता और पैसा। वे मूर्तियां तो बहुत बढ़िया हैं, वो महापूज्य हैं, उनके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं। यदि तेरे चित्त ने उनका चुनाव कैसे किया, यदि तूने सही भावना से किया तो मुझे ऑब्जेक्शन भी नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूं इस पर थोड़ा ध्यान दे ले, वो जिनने किया होगा उनको तो जाने दे, तो गए, लेकिन तेरा हाथी होता तो क्या होता है? कि तूने वहां भी कुछ ना कुछ अपना कुछ ना कुछ लगा, और हम तो बहुत आगे बढ़ गए। एक सही घटना है देवलाली की, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आदमी का स्वर्गवास हो गया है। मैं काल्पना की उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा समझना कि मेरे पास एक भाई आए कि हमें शांतिनाथ भगवान चाहिए, और मैंने बोला था वो 25,000 में सबको शांतिनाथ भगवान को विराजमान करने के लिए दे रहे थे, लग रही थी बोलियां, तो उन्होंने फटाफट शांतिनाथ की और 25,000 की लिखा दी। अब कोई दूसरा आड़ गया होगा, वो ज्यादा नजदीक का होगा तो शांतिनाथ उसने बुक कर लिया क्या, तो वो मेरे पास आए के साहब कि तुम्हारे लोग बहुत ऐसे हैं, प्रतिष्ठाचारी ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, व्यवस्थापकों को गालियां देने लग गए, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, मेरे साथ अन्याय किया, और आप ही हो, मैं आपके दरबार में आया हूं, आप मुझे न्याय अवश्य दिलाएंगे। मैंने कहा मैं न्यायाधीश नहीं हूं, किसने बनाया है मुझे, मैं न्याय की कुर्सी पर कहां बैठा हूं? नहीं नहीं तो अभी मेरी फरियाद तो सुनो ही सुनाओ साहब, कि साहब आप मेरे को किसी भी तरह शांतिनाथ की दिला दो, मेरे को मल्लीनाथ टिका रहे क्या बोला ये मल्लीनाथ का अपमान नहीं है?
वे तीर्थंकर नहीं है, वे मोक्ष नहीं गए, उनमें क्या कमी है मैं आपसे पूछता हूं। कैसा कोई ले नहीं रहा मंदिर आपको, मुझे तो कह रहे बस सबसे ज्यादा रिजेक्टेड भगवान। तो मैंने कहा तुमको शांति रात क्यों चाहिए, बोले मेरे बेटे का नाम शांतिलाल है ना। क्या काम थे वस्तु से लोग तो अपने बेटे का नाम महावीर इसलिए रखते हैं कि कम से कम जब मैं मरने लगूंगा तो मेरे मुख से महावीर महावीर निकलेगा तो लोग तो ये समझे कि मैं भगवान महावीर को याद करते करते मरा हूं। नाम तो बेटे ही का निकलना है और दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, वहां महावीर खुश हो जाएंगे और यहां बेटा भी दौड़ के चला आएगा। क्या अरे अरे हमारे हृदय के अंदर में कितनी गहराई से कितना गहरा निथात भरा पड़ा है और वो किन किन रास्तों से व्यक्त होता है, हम तो उसका पोस्टमार्टम करते हैं। हमें ना कोई महावीर ना शांतिनाथ ना मल्लिनाथ किसी से ना विरोध है ना पक्ष है किसी का किसी भी करो, ऐसे जान बूझ कर हमने जो ऊपर तीन मूर्तियां विराजमान करी ना उस वक्त ऐसे ही लगाया दिमाग में कहीं से कोई जुड़ ना जाए हिसाब किताब, और जुड़े तो प्योर तात्विक हो मान लौकिक नहीं हो, तो फिर पावापुरी सम्मेद शिखर और कैलाश पर्वत बनाने का नक्की किया तो कैलाश से आदिनाथ मोक्ष गए थे इसलिए आदिनाथ विराजमान करी, बाबापुरी से महावीर गए थे इसलिए महावीर करी, और शांतिनाथ गए थे वहां से सम्मेद शिखर से पार्श्वनाथ भी गए हैं। आजकल तो पार्श्वनाथ की पूजा ज्यादा होती है वहां, क्यों पार्श धाम ही बनते हैं, शांति धाम किसी ने नहीं बनाया, हमने जान बूझ कर शांतिनाथ रखा और वे भी वहां से मोक्ष गए हैं, उनकी भी एक टोंक है। मेरे कहने का आशय यह है कि हमारे चित्त का परिमार्जन हमको कैसे करना चाहिए, ये हमें उस अज्ञान का निमित्त के लिए तुमको कभी वेट नहीं करना पड़ेगा, समझ गए ना। इसलिए कहते हैं कहाँ आ गए थे, आत्मख्याति पढ़ रहे थे ना अपन, इससे बचने के लिए यदि यह तर्क उपस्थित किया जाए कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से प्रणमाता है इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा, वो कहता है ना कि स्वयं प्रणमनशील नहीं है तो संसार का अभाव हो जाएगा, क्योंकि वो कालमान वगैरह कर्म रूप प्रणमित नहीं होंगी तो संसार नहीं होगा कि जीव प्रणमा देगा ना। इस तर्क पर विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं अप्रणमित पुद्गल द्रव्य को जीव कर्म रूप प्रणमाता है कि स्वयं परिणमित पुद्गल द्रव्य को, वही बात जो मैंने तर्क दिया था ना ये हाथ को मोड़ने का, फिर इसका उत्तर इसमें आएगा वो कल पढ़ेंगे।